पदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
सभी भक्तों का स्वागत है इस बहुत ही सुंदर फार्म पर। कुछ नाम है इस फार्म का? वृंदावन गार्डन। तो वृंदावन गार्डन में आप सबका स्वागत है और ये ऐसा वृंदावन गार्डन है जहां पर अंगूर भी उगते हैं। नहीं तो यदि आप वृंदावन में जाओ तो वहां पर कोई भी गार्डन में आपको अंगूर नहीं मिलेंगे उगते हुए। तो देवदर्शन प्रभु और नीलाचल प्रभु और उनका पूरा परिवार, उनको हम धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत उत्साह है उनको, हर वर्ष वो यहां पर ये ट्रिप आयोजित करते हैं सभी भक्तों के लिए। और अंगूर फेस्टिवल इसे कहा जाता है। हालांकि आप लोग सब तो यहीं के हैं और पूरे वर्ष भर भी अंगूर खाते होंगे, परंतु यहां पर भक्तों के साथ आकर जब अंगूर खाया जाता है तो उसमें कुछ विशेष आनंद होता है। जैसे नीलाचल प्रभु हमको दिखा रहे थे उनका फार्म अभी, और वो जिस क्षेत्र में ले गए वो सारे अंगूर जो आपने दर्शन किए वो सब एक्सपोर्ट क्वालिटी है। तो मैं थोड़ा उसके विषय में सोच रहा था कि भक्ति में आने के वजह से देखिए आपको जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है और जो भारत की क्वालिटी है दोनों खाने को मिलती है। उनको केवल वो एक्सपोर्ट ही मिलता है खाने को, और जो भक्ति में नहीं है उनको वो एक्सपोर्ट नहीं मिलता यहां पर रहते हुए भी, और जो इंडियन है वो भी इतने अच्छे क्वालिटी का नहीं मिलता। और उस अंगूर के पेड़ को देखते हुए मैं सोच रहा था कि हम सब केवल अंगूर को देखने में इतने मग्न थे, परंतु यदि उस पेड़ को आपने देखा होता तो जो पेड़ है वो पेड़ एकदम सूखा, उसका जो ट्रंक था एकदम सूखा दिखता है। किसी ने ध्यान दिया उस पेड़ के ऊपर या केवल अंगूर के ऊपर ध्यान था? वो पेड़ को देखो तो एकदम सूखा हुआ दिखता है वो, परंतु देखिए भगवान की सृष्टि कि ऐसे सूखे हुए पेड़ से इतने मधुर फल उगते हैं। आप लोग सब अंगूर खाए कि नहीं सुबह? जिह्वा से दर्शन किया अंगूर का। तो उसी प्रकार से ये जो मनुष्य देह है ये उस पेड़ के समान है जिसके अंदर कोई रस नहीं है, निरस है, असत अचित और निरानंद। ये हमारा शरीर है और कितना कुछ हमने इस शरीर के विषय में सुना है शास्त्रों में। इस मनुष्य शरीर का गुणगान भी हुआ है और इस मनुष्य शरीर के विषय में बहुत कुछ और भी कुछ कहा गया है। जैसे श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में एक ही श्लोक में इस शरीर का गुणगान किया गया है और ये शरीर कितना नश्वर है इसके विषय में भी कहा गया है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानुषो देहो, कहा गया है कि ये मनुष्य जो देह है वो बहुत दुर्लभ है। इतना दुर्लभ है कि चाहे हम कल्पना भी अपनी कुछ लगा लें या अपना कैलकुलेशन लगाएं कि मैंने इतने पुण्य कर्म किए और इसके वजह से और करूंगा तो मुझे मनुष्य देह मिलेगा, तो हमारी गणना से कैलकुलेशन से परे है ये मनुष्य देह मिलना सबसे पहले। इसलिए इसे इतना दुर्लभ कहा गया है। 84 लाख योनियों में केवल 4 लाख हैं मनुष्य देह, और उनमें से भी बहुत से ऐसे मनुष्य देह हैं जो सक्षम नहीं है भगवत प्रेम प्राप्त करने के। तो कहा गया है कि मनुष्य देह जो इतना दुर्लभ है, परंतु इस देह में रह पाना, पता नहीं कितने वर्ष हम जिएंगे इस मनुष्य देह में, क्योंकि देहिनाम क्षण भंगुर, ये देह क्षण भंगुर है। हालांकि दुर्लभ है परंतु उसके साथ साथ इसको क्षण भंगुर भी कहा गया है। यदि कोई चीज दुर्लभ हो तो कोई आशा करेगा कि बहुत समय तक यदि मेरे पास रहे तो कुछ उसका फायदा मैं उठा सकूं, परंतु यदि ये देह दुर्लभ है और उसके साथ साथ क्षण भंगुर भी है तो थोड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। परंतु इस श्लोक में कहा गया है कि इस मनुष्य देह की दुर्लभता इससे भी अधिक दुर्लभ क्या है, तत्रापि दुर्लभम मन्ये, इससे भी अधिक दुर्लभ वस्तु क्या है, वैकुंठ प्रिय दर्शनम, कि जो वैकुंठ के प्रिय हैं भक्त भगवान के उनका दर्शन होना, ये इस मनुष्य देह से मिलने से भी अधिक दुर्लभ है। केवल दर्शन कहा गया है यहां पर, ये नहीं कि उनका संग या उनकी कृपा, वो तो सब और भी दुर्लभ है। तो इसीलिए हम सोच रहे थे कि ये जो मनुष्य देह है जिसे शास्त्रों में एक और जगह पर कहा गया है शरीरम व्याधि मंदिरम, कि ये मंदिर है, परंतु किसका मंदिर है, व्याधि, व्याधि कहते हैं बीमारी को। तो ये शरीर जो है बीमारियों का मंदिर है, एक बीमारी नहीं, कितने ही सारी ऐसी बीमारियां हैं जो अभी भी हमारे शरीर में हैं हमें पता नहीं, और कौन सी बीमारी कब उठकर आएगी बाहर इस शरीर से कोई ठिकाना नहीं। हाँ डॉक्टर साहब, बराबर है। तो डॉक्टर से यदि पूछा जाए कि आप कौन से मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, ये शरीर व्याधि मंदिरम, इस मंदिर के पुजारी हैं। तो जैसे वो अंगूर की जो टहनी थी बिल्कुल सूखी हुई काली रंग की और कोई उसमें रस नहीं, और टहनी को कोई एक्सपोर्ट नहीं करता, और उस टहनी को कोई चबाता नहीं, उसका कोई रस नहीं निकालता। मान लो कि आज ब्रेकफास्ट में आप सबको वो अंगूर के पेड़ की टहनी का रस निकाल कर दिया जाता। तो ये शरीर उसी प्रकार से है, परंतु जैसे वो सूखी हुई टहनी इतने मीठे फल उत्पन्न करती है, उसी प्रकार से जो मनुष्य शरीर है हमारा, इसके अंदर एक गुण है कि वो कुछ इसी प्रकार की मधुर वस्तु उत्पन्न कर सकती है, और वो है भगवत प्रेम। भगवत प्रेम की तुलना यदि हम उस मीठे अंगूर से करें तो वही एकमात्र गुण है इस मनुष्य शरीर में, कि इस मनुष्य शरीर को हम उपयोग में लाकर वो भगवान के प्रति जो शुद्ध प्रेम है मधुर, उसको उत्पन्न कर सकते हैं। और उसको जब हम उत्पन्न कर लेंगे तो फिर अपने आप वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट क्वालिटी कहां जाएगा? श्री गोलोक वृंदावन धाम। तो जो टहनी है वो यहीं रह जाएगी, परंतु जो असली माल है वो एक्सपोर्ट होगा भगवत धाम। तो ये जो भजन आज हमने गाया, ये बहुत ही मार्मिक भजन है, और इसके अंदर भक्ति विनोद ठाकुर वो बहुत ही सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र चैतन्य महाप्रभु हमें दिए हैं युग धर्म, तो वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के समक्ष, केनो हरे कृष्ण नाम हरि बोले मनो प्राण कांदेना, कि ये जो आपका हरे कृष्ण महामंत्र है इसको मैं जप करता हूं तो मेरे मन क्यों नहीं क्रंदन करता। और वो कारण देते हैं, वो कहते हैं कि ये जो मन है ये मन मेरा एक पाषाण की तरह है। जैसे आपको याद होगा हमने वो एक भजन गाया था यदि गौर न होई तो उसमें वासुदेव घोष वो कहते हैं पाषाण हृदय, कि वो कहते हैं कि मेरा हृदय हृदय नहीं पाषाण है। कई बार लोग कहते हैं कि कैसे पत्थर दिल के हो, कोई तुम्हारे अंदर भावनाएं नहीं है, परंतु वासुदेव घोष क्या कहते हैं कि मेरा हृदय है ही नहीं। किसी का होता है पत्थर हृदय, परंतु ये कहते हैं हृदय ही नहीं है, पत्थर है वहां पर, हृदय के बदले पत्थर है। ये उनकी नम्रता है। और वो क्यों कह रहे, क्योंकि भगवान के नाम उच्चारण करते समय मेरे आंखों से अश्रु प्रवाहित नहीं हो रहे। नयनम गलद अश्रु धारया, वदनम गदगद हृदया। और ये सारी जो लक्षणे हैं ये सब कुछ नहीं पा रहा हूं मैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी कहते हैं। तो वो यहां पे अपने मन की तुलना एक पक्षी से कर रहे हैं। पक्षी न जानी कौन अपराध है, हमारा जो मन है उसकी तुलना एक पक्षी से की जा रही। जैसे यदि आप एक पक्षी को देखो तो कितना अस्थिर रहता है एक पक्षी, कभी आवाज निकालेगा तो कभी चुप हो जाएगा, कभी उड़ेगा तो कभी बैठा रहेगा, कभी यहां देखेगा कभी वहां देखेगा। कोई आप ठिकाना कर सकते हैं कि पक्षी अभी ये करेगा? कोई ठिकाना नहीं उस पक्षी का। उसी प्रकार से हमारा मन है, कोई ठिकाना नहीं। कभी अंगूर अच्छे लगे, बहुत हो गया अंगूर, अभी और कुछ लाओ। या फिर कभी कहीं पर जाने की इच्छा की, फिर बाद में तुरंत आज केवल सोते हैं। फिर कुछ पहनने की इच्छा की, नहीं, उसके बाद में तुरंत मन पलट जाता है कि नहीं। इसलिए भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं एक और भजन में, वो कहते हैं कि ये जो मेरा मन है, ये मन हर समय संकल्प विकल्प में ही अटका रहता है, किसी को अपनाऊं मैं, किसी को त्यागूं, भोग त्याग भोग त्याग, इसी में ये मन अटका रहता है जैसे एक पक्षी। तो यहां पर वो कहते हैं कि पक्षी न जाने कौन अपराध, ये पक्षी जो मन है ये जानता नहीं कि कितने इसने अपराध किए हैं। ये जो शब्द है अपराध, ये एक बहुत ही विशेष शब्द है। जैसे श्रीमती राधा रानी को कहा जाता है राधा, तो राधा शब्द कहां से आया, आराधना से। तो वो हर समय भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लगी रहती हैं, इसलिए उनका नाम है राधा। और हम भी श्रीमती राधा रानी के पद चिन्हों पर चलते हुए जब भगवान की आराधना में लगते हैं, तो हम भी श्रीमती राधा रानी के भाव में होते हैं। परंतु जब कोई व्यक्ति अपराध कर देता है, तो वो जो आराधना है उसके अंदर जब अवरोधन आता है तो उसे कहते हैं अपराध। आराधना में अवरोधन आना अपराध। तो यहां पर भक्तिनोद ठाकुर कह रहे हैं कि पता नहीं कितने ऐसे अपराध किए हैं तुमने, और ये जो मन है अपना, ये मन के कारण लोग अपराध और पाप करते हैं। सबसे पहले अपराध या पाप होता है मन में, और उसके पश्चात कोई उसे शारीरिक रूप से करता है। और इसलिए भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं कि इतने अपराध किए हैं उसके वजह से मुख पर हरे कृष्ण नाम ठीक से नहीं आ पा रहा, या जब आता भी है तो ये पक्षी विचलित होता है कि ये क्या कर रहे हो, इसे तुरंत बंद करो, या कर भी रहे हो तो जल्दी जल्दी कर कर खत्म करो। मन क्या कहता है, जल्दी जल्दी कर कर खत्म करो। इसीलिए जब हम हमारा जप करते हैं, जैसे कई लोग जब 16 माला करते हैं हम लोग, तो प्रमाण क्या है कि हमने जप अच्छा किया है, क्या प्रमाण है कि 16 माला जप अच्छा हुआ है, या केवल खत्म किया है जप, जप किया है कि माला खत्म की है, ये दोनों में अंतर है। अक्सर हम क्या कहते हैं, आज की माला खत्म हुई, तो खाली माला खत्म की है हमने, बस काउंटर नीचे खींचा है, तो इसलिए कहते हैं खेचो हरे कृष्णा नाम हरि खेचो। ये जैसे यहां पे केनो हरे कृष्णा है, तो हमारा केवल खेचो हरे कृष्णा, खींचते रहते हैं बस। तो क्या प्रमाण है कि हमने 16 माला अच्छी से जप किया, इसका प्रमाण है कि जब 17 माला आता है तो कितनी इच्छा होती है वो 17 माला करने की। हा? यदि हमारे अंदर इच्छा इतनी प्रबल हो कि अब मैं 17 माला करने जा रहा हूं, अहो भाग्य मेरा, तो मानना चाहिए कि जब कुछ ठीक हुआ है। यदि 16 माला पूरा हुआ और उसके बाद में 17 माला, ये नंबर मुझे पता नहीं क्या है। तो इसलिए यहां पर भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं मुखे हरे कृष्ण, ये मुख से हरे कृष्ण नाम नहीं आ रहा क्योंकि अपराध इतने करे हैं हमने। और वो आगे कहते हैं कि जो हृदय है इसको मंदिर की तुलना की गई है, कि बनेर पखीरे धरे राखलाम हृदय मंदिरे, कि तुम ये जो हृदय रूपी मंदिर है इसे बहुत ही सावधानी से इसको तुम जैसे हमारे शरीर में हम कितने सावधानी से हमारे अंगों की रक्षा करते हैं, हमारे माथे की रक्षा, मुख की रक्षा, हाथ पैर की रक्षा, परंतु यहां पर वो कह रहे हैं कि सबसे अधिक रक्षा किसकी हमें करनी चाहिए, हृदय की। जैसे मुझे याद है बचपन में जब सुबह सुबह हमें स्कूल जाना होता था तो हमारा स्कूल 10:30 का था, सुबह 10:30 का, तो मैं उठता था 9:30 बजे और 1 घंटा वो पूरा प्लानिंग था, 1 घंटे में पूरा हो जाएगा स्कूल जाने की तैयारी, उससे पहले उठना नहीं। तो हमारी माता जी बहुत हम पर चिल्लाती थी कि ये क्या तमोगुण का लक्षण है। तो जब मुझे याद है वो कोई भजन लगाया करती थी सुबह सुबह टेप रिकॉर्डर में, तो जब मैं स्नान करने जाता था तो वो जो भजन चलते 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 जो भजन आता था, क्योंकि मेरा टाइमिंग फिक्स था स्नान करने का और वो भजन का भी टाइमिंग फिक्स था, उसी समय वो बजता था, कुछ तीसरा चौथा नंबर का वो भजन था उस टेप में, और वो भजन जैसे ही मैं स्नान करता रहता था तो सुनता था मुझे भजन अभी भी याद है, क्यों पानी में मलमल नहाए मन की मैल मिटे मिटा, अरे प्यारे मन की मैल मिटा, इस प्रकार का एक वो भजन था। तो जैसे ही मैं वो साबुन लगाकर अपना शरीर मलता रहता था तो मुझे लगता था यही भजन क्यों आता है इस समय, क्यों पानी में मलमल नहाए मन की मैल मिटा। तो अब जाके समझ में आता है कि हम देखिए ये जो बाहरी शरीर है इसको मल मल कर कितना साफ करते हैं रोज, कुछ उपटन लगाया, साबुन लगाया, तेल लगाया, लोशन लगाया, क्रीम लगाया, सेंट लगाया, क्या कुछ नहीं करते शरीर के लिए। परंतु यहां पर कहा गया है कि सबसे महत्वपूर्ण हमारा अंग कौन सा है, हृदय, जिसके विषय में कभी हमने चेष्टा नहीं की उसको साफ करने की। तो यहां पर वो पक्षी की तुलना कर रहे हैं मन से, तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं जैसे एक पक्षी को कुछ भी आप सिखा सकते हैं बोलना, ये जैसे देखिए इसको सिखाया नहीं इसलिए कहें 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 करता रहता है, वैसे ही हमारा मन है कि जब तक हरे कृष्ण महामंत्र सिखाया न जाए तो केवल कचर 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 कुछ ना कुछ बोलता रहता है, और हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा सब कुछ बोलेगा ये मन। जैसे प्रभुपाद जी एक बंगाली औरत की कथा बताते थे कि ये बंगाली औरत थी जिसके पुत्र भक्त थे भगवान कृष्ण के, और ये हर समय अपनी माता को कहा करते थे एक बार तो भगवान का नाम लो, ये हरे कृष्ण महामंत्र लो, अभी उम्र बीती जा रही है, इसे कभी नाम नहीं लिया भगवान का। तो अब अंत समय आ गया, ये अपनी मृत शैया पर है, तो इनके पुत्र आते हैं कहते हैं कि अभी कुछ चंद सांसें रह गई हैं आपकी, अभी तो ये हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण कर लो तो उद्धार हो जाएगा, तो केवल कुछ 2-3 सांसें रह गई थी उस महिला की, तो जब कहा गया कि बोलो बोलो हमारे पीछे बोलो बोलो अभी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोलो राम हरे राम 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 हरे हरे ऐसे कहो, तो बंगाली में कहती है बाबा रे बाबा एतो बड़ो नाम नेते पारवे नाय, और मर गई। क्या अर्थ हुआ इसका? बाबा रे बाबा, ऐतो बड़ो नाम, इतना बड़ा ये हरे कृष्ण महामंत्र मैं नहीं बोल सकती, और कितना बड़ा वाक्य बोल दिया इसको बोलने के लिए। यदि उस वाक्य के बदले यदि वो हरे कृष्ण महामंत्र बोल देती थी, तो उसी प्रकार से देखिए वो कह रहे हैं कि ये जो मन है, मन रूपी पक्षी है, पक्षी को सिखा सकते हैं। जैसे तोते को सिखाया जाता है बोलना, तो जो सिखाओ वो तोता बोलता है। तो उसी प्रकार से यहां पर भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मन रूपी पक्षी ये सीखो, हरे कृष्ण महामंत्र इसका जप करना सीखो। और जैसे पक्षी उड़ने में बहुत आनंद लेता है, तो यहां पर वो कह रहे हैं कि हे मन रूपी पक्षी, चलो पक्षी रूपे देशे जाई, दे देशे ते मनेर मानुष आशा जाओ या नाई। कि हे पक्षी, उस देश में जाओ, उड़ो, जहां से फिर कभी वापस नहीं आना पड़े, और वो है भगवान का श्री गोलोक वृंदावन धाम। और अंत में भक्ति विनोद ठाकुर बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं अपने इस भजन से, और वो कहते हैं पखीर तोर मरण काले ते चरबी वासेर दोलाते। कि जब मरण काल आएगा उस समय कुछ शक्ति नहीं रहेगी बोलने की। जैसे वृंदावन में मैंने देखा एक शिवराम महाराज की शिष्या थी, वो 90 वर्ष की थी और अब शरीर त्याग रही थी वृंदावन में। तो वहां पर सभी भक्त आकर कीर्तन कर रहे थे, 4 घंटे तक कीर्तन चल रहा था, आइंद्र प्रभु कीर्तन कर रहे थे, तो मैं भी बैठकर देख रहा था। तो ये महिला, इनके हाथ में बीड बैग थी परंतु मुख से महामंत्र नहीं निकल पा रहा था, मुख से केवल जो फेन होता है, जो महाराज कुलशेखर ने अपनी प्रार्थना में कहा है, प्राण प्रयाण समये कफ वात पित्त, कि जो अंत समय आता है उस समय ये कंठ कुछ उच्चारण नहीं कर पाता, और यहां से केवल क्या निकलता है, कफ, कफ और वो फेन निकलता है। तो केवल मैंने देखा वही निकल रहा था और उच्चारण नहीं हो पा रहा था, कोई शुद्ध भी नहीं थी। तो देखिए अभी जो हमको शक्ति मिली है, ये जो शक्ति मिली है, भगवान ने इतनी शक्ति दी है, इसलिए यहां पर कहा गया है ओरे तोर मुखे आगुण जीवे तुले। कि जब व्यक्ति को चिता पर जलाया जाता है, मृत शरीर को जलाया जाता है, तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं सबसे पहले आग जो है जिह्वा को लगेगी, ये जिह्वा को लगेगी आग, और तब यदि सोचोगे कि अरे मैंने महामंत्र का जप नहीं किया इस जिह्वा से, तो अब मैं शुरू करता हूं, तो बहुत देरी हो जाएगी। तो वो कहते हैं ओरे चार जने थे कांधे कोरे लोए जाबे स्मशान घाटे थे, कि उस समय 4 लोग उठाकर स्मशान भूमि पर ले जाएंगे, और उस समय तुम्हारे बचाव के लिए और कोई नहीं है, केवल जो तुम्हारे कर्म है, जो तुम्हारे मन ने जो कुछ सोचा है, किया है और कहा है, वही बस तुम्हारे साथ जाएगा। तो इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर यहां पर वो हमें सिखा रहे हैं, वो कहते हैं कि ऐसी हमारी प्रार्थना होनी चाहिए भगवान के सामने महामंत्र जप करते समय, कि जो मेरा मन है ये क्यों नहीं आपके हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में ये रुदन या क्रंदन करता। तो जब हम ऐसी प्रार्थना करेंगे तब जाकर भगवान की कृपा से हमारा जो ये मन है ये जो हृदय है अब पाषाण की तरह बन गया है भगवान के लिए। और इंद्रिय भोग के लिए हमारा मन और हृदय बहुत भावुक रहता है, सारी इच्छाएं भावनाएं इंद्रिय भोग के लिए बहुत अच्छी रहती हैं, परंतु भगवान के नाम और भगवान की भक्ति के लिए वो पाषाण की तरह हो जाता है, कोई भावनाएं नहीं। तो इसलिए यदि हम प्रार्थना करेंगे हमारे हरे कृष्ण जप में और जो अपराध से बचेंगे, तब जाकर कुछ आशा है कि ये जो हमारा मनुष्य शरीर है जो रूखा सूखा वो टहनी की तरह है, उसमें से कुछ अंगूर जैसे मीठे फल भी उग पाएंगे। नहीं तो जैसे हमारे देवदर्शन प्रभु बता रहे थे कि लॉस हो गया था इस साल की पिछले साल इस साल दोनों साल लॉस हो गया। वो कह रहे हैं कि दोनों साल लॉस हो गया, अंगूर नहीं उगे। तो ये अंगूर यदि नहीं उगेंगे तो ये मनुष्य जीवन भी लॉस हो जाएगा, और पता नहीं फिर से ऐसा शरीर मिलेगा कि नहीं जिसमें से अंगूर उग पाएंगे कि नहीं। बाकी जो शरीर हैं, बाकी 80 लाख शरीर, बहुत कम आशंका है कि उसमें से अंगूर उगे, असंभव के समान है वो तकरीबन। और ये भी जो शरीर है हमारा, ये भी शरीर एक बार राधानाथ महाराज कह रहे थे कि ये जैसे अंगूर किशमिश में बदल जाता है। अंगूर देखिए दिखने में कितना सुंदर दिखता है, तो जवानी में ये शरीर जो है ये अंगूर के समान एकदम सुदृढ़ सुडौल शरीर होता है व्यक्तियों का, परंतु बुढ़ापे में यही अंगूर किशमिश बन जाता है। परंतु किशमिश के भी गुण होते हैं, उसको भी यदि आप खीर में हलवे में डालो तो कुछ किशमिश का भी उद्धार हो जाता है। तो उसी प्रकार से यदि ये शरीर भी उस प्रकार से हो गया, परंतु उस समय भी यदि हम भगवान को शरणागत होंगे और अपनी जिह्वा से ये भगवान का नाम लेते रहेंगे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे, तो कुछ अर्थ निकल पाएगा हमारे इस मनुष्य शरीर का। तो इसीलिए हम जब यहां पर एकत्रित होते हैं, जब कभी भी अवसर मिले वैष्णव के साथ आने का, तो ये समझना चाहिए वो श्लोक में 11वें स्कंद के, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन, कि जो भगवान के भक्त हैं वैकुंठ प्रिय जो हैं, उनका जो दर्शन है वो सबसे दुर्लभ वस्तु है इस पूरी सृष्टि में। तो यहां पर जो हम आज सत्संग में आए हैं, ये सबसे दुर्लभ वस्तु है पूरी सृष्टि में जो हो रही है। हालांकि ये गांव को कोई जानता भी नहीं होगा, ये नासिक के बाहर, नासिक में बहुत से लोग नहीं जानते होंगे यहां पर ऐसा कुछ गांव है, परंतु जैसे लोग पिकनिक मनाने जाते हैं और वहां पर जाकर इंद्रिय भोग की उत्पत्ति करना चाहते हैं, उर्जित करना चाहते हैं इंद्रिय भोग, एकत्रित होते हैं, कुछ गाना लगाते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ डांस करते हैं, कुछ देखते हैं टीवी इत्यादि, यहां पर टीवी भी लगाया आप लोगों के लिए, लेकिन ये सब कुछ हम एकत्रित किए हैं क्यों? ताकि भक्ति उर्जित हो इसमें से। तो इसीलिए ये सबसे दुर्लभ है ये संग, भगवान के भक्तों का संग। इसीलिए सत्संगत्वे निस्संगत्व निस्संगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति, कि सत्संग करने का अंततः परिणाम क्या होना चाहिए? जीवन मुक्ति, एक्सपोर्ट क्वालिटी। हमारे ऊपर भी वो छिक्का लग जाना चाहिए, एक्सपोर्ट क्वालिटी, ये इस संसार में रहने लायक नहीं है। परंतु वो जो सिक्का है वो भगवान लगाएंगे जब देखेंगे कि क्वालिटी है कि नहीं। एक्सपोर्ट क्वालिटी कहा गया है, तो यदि वैसा क्वालिटी होगा तब जाकर एक्सपोर्ट होंगे इस संसार से भगवत धाम। और वो क्वालिटी आएगा जब हम इस प्रकार के संघ को और बढ़ाएंगे अपने जीवन में, और इस संघ में भगवान का जो विशेष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र है इसके विषय में श्रवण और कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। तो क्या आज्ञा है देवदर्शन प्रभु अब आपकी? हाँ, ये दिखेगा कि नहीं पता नहीं अब तो।
लाइटिंग बहुत,
देखिए ऐसे प्राकृतिक माहौल में रहने से टीवी भी काम नहीं कर सकता। यदि टीवी हो तो भी कोई देख नहीं पाएगा इसको, क्योंकि भगवान की सूर्य की रोशनी इतनी है। तो टीवी जब देखना होता तो सब अंधेरा करना पड़ता है ना? अंधेरा का अर्थ क्या है? तमोगुण। तो जब तमोगुण में जाएंगे तब जाकर उसके अंदर से और जो तमोगुण मिलेगा और रजोगुण। इसलिए प्रकाश को कहा गया है सत्वगुण। कृष्ण सूर्य सम माया होए अंधकार, जहां कृष्ण तहार नहीं मायार अधिकार। तो क्योंकि ये नहीं चल सकता तो इसलिए हम भक्तों के संग में कुछ कीर्तन करेंगे। और गैस चालू हो गया तो संकेत दे रहे हैं कि सबके लिए प्रसाद भी यहां पर आयोजित किया गया।
एक कीर्तन के